ओम शांति। संपूर्णता की इस यात्रा पर आनंद पूर्वक तेज गति से आगे बढ़ने के लिए हम सभी को निरंतर योगयुक्त होने पर ध्यान देना है। हमारा जीवन योगयुक्त जीवन बन जाए। आए भी तो हम बाबा के पास इसीलिए हैं और स्वयं योगेश्वर भी हमें योग सिखाने के लिए ही आते हैं, क्योंकि स्वयं ज्ञान के सागर ने हमें योग सिखाया है। इसलिए वो योग सभी योगों से सरल है, परंतु कोई भी सरल चीज यदि अभ्यास नहीं की जाती तो सरल चीज भी कठिन हो जाती है। हम अभ्यास के द्वारा अपने योग को सरल बनाएं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अभ्यास करेगा और योग को सरल करने की जो धारणाएं हैं उन पर ध्यान देगा, उसका जीवन तेजी से योगयुक्त होता जाएगा। योगयुक्त जीवन और योग अभ्यास दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। जैसे जैसे हमारा योग अभ्यास होता जाता है, जीवन योगयुक्त होता जाता है। किसे कहते हैं योगयुक्त जीवन? जिसमें ऐसा लगे कि बाबा हमारा है, बहुत अपनापन हो जाए उससे, बहुत समीपता का आभास होने लगे, हम और वो जैसे निरंतर साथ रहते हैं, कंबाइंड हैं, उसका सब कुछ हमारा है, हमारा सब कुछ उसका है। योगयुक्त जीवन न्यारा और प्यारा जीवन, सभी के लिए प्रेम और शुभ भावनाओं से भरा हुआ जीवन, बिल्कुल सरलता को जीवन में धारण किए हुए व्यक्ति, सहनशीलता, जिसने अपना अहंकार संपूर्ण रूप से छोड़ दिया हो, जिसकी वाणी में मृदुता, सरसता, श्रेष्ठता, अथवा यो कहें जिसकी वाणी वरदानी बन गई हो, ऐसा जीवन योगयुक्त जीवन कहलाता है। जिसमें व्यक्ति बहुत हल्का रहता हो, जहां मनुष्य ने विकारों की अग्नि को शांत कर दिया हो, जो व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को रोकने में सक्षम हो गया हो, वो सच्चा योगी है। हमें सच्चे योगी बनना है। केवल योग लगा लिया बैठकर, उसमें भी कुछ लगा कुछ नहीं लगा, इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें पहले लक्ष्य रखना है कि हमारा योग 4 घंटे अवश्य हो जाए रोज। कई लोग पूछते हैं ये योग क्या बैठकर किया जाएगा? देखिए, यद्यपि योग बैठने का सब्जेक्ट नहीं है, तो भी अनुभवों से हम सब जानते हैं कि योग में बैठना भी बहुत आवश्यक है। बैठकर अपनी बुद्धि को शिव बाबा के स्वरूप पर स्थिर करने का बार बार अभ्यास करना, ये भी योग को सरल और सफल करता है। कोई चाहे कि हम सहज रूप से ऐसे ही योग करते रहें, बाबा मेरे साथ है या मुझे बाबा से बहुत प्यार है, इतने से काम नहीं चलेगा। बाबा के स्वरूप पर हमारी बुद्धि लंबा काल स्थिर रहने लगे, हमें ऐसा लगने लगे उसके वाइब्रेशंस निरंतर हमको मिल रहे हैं, इस योग की प्रैक्टिस बैठकर भी बहुत करनी है। तो जिन्हें इस ऊंची मंजिल पर चढ़ना है, उन्हें कम से कम 1 घंटे सवेरे और 1 घंटा शाम को बैठकर योग का एकाग्रचित होकर अच्छा अभ्यास अवश्य करना चाहिए, संपूर्ण लगन के साथ, स्थिरता के साथ। इससे सारा दिन योग सरल हो जाएगा और योग हमें परम आनंद भी प्रदान करेगा। 4 घंटे के बाद हम अपने योग को 6 घंटे तक ले जाएं, उसके बाद 8 घंटे तक ले जाएं, और इस तरह बढ़ाते बढ़ाते हम इस फीलिंग तक चलेंगे कि हम निरंतर योगयुक्त हैं। संपूर्णता की एक ये भी परिभाषा है, जब आत्मा निरंतर योगयुक्त हो जाती है तब संपूर्ण अवस्था को पाती है। संपूर्ण अवस्था में हमारे संकल्प सभी सिद्ध होने लगते हैं। हम अपने सारे कार्य केवल संकल्प की शक्ति से करने में समर्थ हो जाते हैं, तो हमें धीरे धीरे अपना योग का चार्ट बढ़ाते चलना है। साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि कौन सी बातें योग में बाधक हैं। जैसे जो व्यक्ति बातों में बहुत रहेगा, व्यर्थ की बातों में, उसे बाप के साथ का अनुभव नहीं होगा। जहां बातें हैं वहां बाप नहीं। अगर बाप का निरंतर साथ चाहिए तो बातों में रस लेना छोड़ना पड़ेगा। हम इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं, विस्तार आप सब स्वयं भी जानते हैं। एक दूसरा बहुत अच्छा महावाक्य है, जो बच्चे साक्षी भाव में स्थित रहते हैं वो साथी के साथ का सहज अनुभव करते हैं। योगयुक्त होने के लिए साक्षी भाव बढ़ाना ये परम आवश्यक है। अपने चित्त को पूरी तरह शुद्ध करना ये परम आवश्यक है। देखिए, योग में दो चीजों का परम महत्व है। हम जानते हैं हमारे पास जो ये दो विशाल शक्तियां हैं, मन और बुद्धि, इनका ही प्रयोग हम योग में करते हैं। मन जितना श्रेष्ठ विचार करेगा, मन में बाबा के लिए जितने ऊंचे विचार होंगे, मन जितना स्वमान में स्थित रहेगा उतना ही योग सरल होगा। इसलिए योग में सफलता पाने वाले को केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि वो निरसंकल्प होकर योग करे, वो अपने मन को पूरी तरह शांत कर दे। यद्यपि हमें इसी स्थिति तक पहुंचना है, लेकिन पहले सुंदर विचारों के साथ योग का सुख अनुभव करना है। दूसरी चीज जो हमारी बुद्धि है, जो थर्ड आई है, थर्ड आई ऑफ विजडम है, तीसरा नेत्र है, इस नेत्र से शिव बाबा का ज्योति स्वरूप स्पष्ट दिखता रहे, ये तब आवश्यक है कि हमारी बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ हो। तो विजुअलाइजेशन क्लियर हो, शिव बाबा का स्वरूप हमें स्पष्ट दिखता रहे चलते फिरते भी, और मन में सुंदर विचारों की रचना हो, तो योग सरल हो जाता है। यदि विजुअलाइजेशन कठिन है तो योग भी कठिन है, क्योंकि यदि हमारी बुद्धि बाबा के स्वरूप पर स्थिर नहीं होती तो मन जल्दी ही इधर उधर भटक जाएगा। इसके लिए बहुत आवश्यक है बुद्धि की सफाई करना, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। बाबा ने इसको इन शब्दों में कहा है, जैसे हाथ की सफाई दिखाने वाले जादूगर चमत्कार दिखाते रहते हैं, वैसे ही यदि तुम बुद्धि की पूरी सफाई कर दो तो उनसे बहुत ज्यादा अलौकिक चमत्कार होने लगे। पर बुद्धि की सफाई, इसके लिए भी बुद्धि चाहिए। हमें अपनी बुद्धि में क्या रखना है और क्या निकाल फेंकना है? हमने अपनी बुद्धि में कहीं गंदगी तो नहीं रख ली है? हमने अपनी बुद्धि में दूसरों के लिए कहीं दुर्भावनाएं तो बैठा कर नहीं रख ली हैं? सावधान होना है। यदि हमने बहुत किचरा अपनी बुद्धि में जमा कर लिया होगा तो हम योग का आनंद नहीं ले पाएंगे। बहुत लोग हैं संसार में, बहुत लोग हैं जिन्होंने गंदगी धारण कर ली है बुद्धि में, न उनको सुख मिलता न शांति। वो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, दूसरों को खराब समझते हैं, और ये दृष्टिकोण उन्हें योग भ्रष्ट कर देता है। हमें योगयुक्त होना है तो कुछ धारणाओं पे तो अवश्य ध्यान देंगे, प्योरिटी पर बहुत ध्यान देना है। देह को देखने की आदत, देह की ओर आकर्षण, देह का चिंतन, देह से संबंधित चीजें देखना, फिल्में देखना, ऐसे सीन सीनरी देखना जिनको आदत है, वो कभी योगी नहीं बन सकते। जो संपूर्ण रूप से अच्छी तरह से दृढ़ता पूर्वक पवित्रता को अपना चुके हैं, वो अच्छे और सहज योगी बन सकते हैं। तो इन धारणाओं के साथ साथ हम कुछ और धारणाओं पे साथ ध्यान दें। दूसरों का अवगुण देखा, तपस्या भंग हुई। दूसरों का परचिंतन चला, तपस्या समाप्त हुई। मन में इच्छाएं बहुत बढ़ी, तपस्या समाप्त हुई। मान शान के पीछे दौड़ने लगे, तपस्या भंग हुई। दूसरों को देखने में लग गए, कौन क्या कर रहा है, तपस्या भंग हुई। हमें तो केवल लक्ष्य की ओर देखना है, अर्जुन बन जाना है, जिसे अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखता था। यदि हम ऐसे बन जाएं, जिन्हें कार्य, सेवाएं, जिम्मेदारी लक्ष्य को न भुलाए, तो हम महान योगी बन सकते हैं। नहीं तो योग का श्रेष्ठ सुख हमारे लिए स्वप्न बनकर रह जाएगा। परम सुख है योग में, बहुत आनंद है, जिसको अतींद्रिय सुख कहते हैं, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, व्याख्या करने से जो समझ में आने वाली चीज नहीं है, जो केवल अनुभवों से जानी जाती है, उसका स्वाद जब तक हमने न चखा हमें पता नहीं चलेगा कि वो क्या चीज है। तो हम केवल लक्ष्य की ओर देखें और कुछ नहीं अपना काम करें और योगी बन जाएं। सेवा और योग, जिन्होंने ये दो लक्ष्य अपने बना लिए हैं और तीसरा कोई लक्ष्य नहीं है, वो श्रेष्ठ योगी बनकर संपूर्णता का सुख अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है योग युक्त जीवन के लिए अमृत वेले के योग पर। सभी जानते हैं इस काल की महिमा, जहां हम स्वयं को अमृत से भर सकते हैं। इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, क्योंकि इसी काल में हम ब्रह्मलोक में विचरण कर सकते हैं, ब्रह्मलोक की परम शांति में डूब सकते हैं। परम ब्रह्मलोक में रहने वाले परम पिता शिव बाबा से परम सुख अनुभव कर सकते हैं। वातावरण शांत होता है, प्रकृति शांत होती है, उठ जाएं आप। एक प्लानिंग हो हमारे पास कि हमें सवेरे उठकर ये अभ्यास करने हैं। बिना प्लानिंग के जब हम चलते हैं तो हम कुछ अनुभव नहीं कर पाते। उठे, योग में बैठे, कुछ सुस्ती हुई, कुछ संकल्प इधर उधर गए, समय पूरा हो गया। हम एक लक्ष्य लेकर बैठे, पहले 5 मिनट ऐसे रीढ़ी होने का अभ्यास करना है, अगले 5 मिनट स्वयं को स्वमान में स्थित कर देना है, नेक्स्ट 5 मिनट बाबा से बहुत अच्छी रूढ़िहान कर लेनी है, ये 15 मिनट 3 बातों में व्यतीत करें, अगले 10 मिनट परमधाम में स्थित हो जाना है, अगले 10 मिनट फरिश्ते स्वरूप के अनुभव में आ जाना है, अगले 10 मिनट विश्व को सकाश देने का कार्य करना है। आपका समय बहुत सुंदर बीत जाएगा। इसके बाद के समय को भी 5 स्वरूपों के अभ्यास में बिताना है, बाबा से बातें करते करते व्यतीत करना है। कई लोग ऐसा करते हैं कि बस 45 मिनट योग किया, हो गया अमृत वेला, खत्म हो गया, तो अपनी स्थिति को भी खत्म कर देते हैं। हमें लक्ष्य रखना है सवेरे उठने से, 3:30 से 4 से, कोई 3 बजे उठते हैं, 8 बजे तक का समय अमृत वेला है। हमें इस 8 बजे तक के समय को 4 से 5 घंटे को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करना है। ये लंबा समय हमारे जीवन का संपूर्ण रूप से कल्याण कर सकता है। जिसको अपनी बुद्धि को एकाग्र करना हो, जिसकी बुद्धि इधर उधर बहुत भटकती हो, वो अमृत वेले उठकर अच्छी तपस्या करे। आप लिख सकते हैं, 40 बार लिखो, मैं आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, लिखते रहो। लिखने लिखने से भी मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। बाबा की महिमा लिखने लगो, उसे बातें करने लगो, उसको सामने देखकर इस कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं कि शिव बाबा से बात करें या बाप दादा से करें, सुख संवतन में करें या परम धाम में करें, कहीं भी करो करो। बात है उसका सुख लेने का। इन छोटे छोटे प्रश्नों से अपने को भ्रमित कभी नहीं करना चाहिए। तो सवेरे के समय को सबसे पहले हमें बहुत अच्छी तरह व्यतीत करना है। और आगे चले हम, हमारे पास बहुत सुंदर, मैं ऐसा कहता हूं कि भाग्यवान आत्माओं को ये समय मिला है, ये अवसर मिला है कि रोज सवेरे सवेरे हम भगवान के महावाक्य सुनते हैं। हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि मनुष्य तो जब आंखें खोलता है तो उसके सामने अखबार होते हैं, टेंशन होती है, समस्याएं होती हैं। हम जब आंखें खोलते हैं तो हमारे सामने स्वयं भगवान होते हैं। अपने भाग्य को देखकर जरा मुस्कुराएं। आंख खुलते ही परमात्मा मिलन होता है। कितने पुण्य किए होंगे उन आत्माओं ने, कितनी श्रेष्ठ दिल से भक्ति की होगी उन आत्माओं ने, जन्म जन्म भगवान से कितना प्यार किया होगा उन आत्माओं ने, आंख खुलते ही जिनसे मिलने के लिए भगवान आ जाते हैं। भगवान अपने कमल मुख से ज्ञान का सागर, त्रिकालदर्शी ब्रह्मा के मुखारविंद से ज्ञान की बरसात करते हैं, हमारे तन मन को भिगो देते हैं। बहुत सुख देती है बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य आत्मा से जन्म जन्म के दुखों को समाप्त कर देते हैं। मुरली का सुख चख कर देखें। मुरली में इसलिए न जाएं कि आपको मुरली सुननी है, बल्कि इसलिए भी जाएं कि बहुत ज्यादा सुख प्राप्त करना है। सुख है ईश्वरीय महावाक्यों में। इस भावना से मुरली सुने कि स्वयं परमात्मा मुझ आत्मा से बातें कर रहा है, कुछ याद दिला रहा है मुझे, कुछ कह रहा है मुझे, उसमें खो जाएं। मुरली हमें योग युक्त बनाती है। वास्तव में यदि मुरली को उसी स्वरूप में स्थित होकर सुना जाए तो मुरली का समय बहुत पावरफुल योग का समय हो जाता है। ज्ञान और योग दोनों एक साथ पैरेलल चलकर हमारे जीवन को महान बना देते हैं। मुरली सुनते हुए हम अभ्यास करें, मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में बैठकर कानों से मुरली सुन रही हूं, कम से कम 10 बार इस फीलिंग में आ जाएं, या मैं फरिश्ता मुरली सुन रहा हूं, या ऊपर से बाबा के वाइब्रेशंस पड़ रहे हैं, उसकी किरणें पड़ रही हैं, नीचे मैं मुरली सुन रही हूं, 10 बार अवश्य हो, एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। मुरली की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखें भी, जरूरी नहीं आप धारणा का सार या पहले जो आता है वही लिखें, जो आपको बहुत प्रिय लगा है वो आप लिखें। वो ज्ञान का खजाना हमारे लिए बहुत कीमती है, समय पर वही खजाना हमें काम आता है। और यदि इस अभ्यास में बैठकर हम मुरली सुनेंगे तो हमारी बुद्धि मुरली में कही हुई बातों को साथ साथ धारण कर लेगी। बाबा ने कहा मुख से मृदु वाणी बोलो। वो कहते हैं बच्चे मन वचन कर्म से किसी को भी दुख न दो। सब सुन लेते हैं, बात वहीं रह जाती है, लेकिन यदि हम इस तरह योग युक्त होकर सुनेंगे तो हमारी बुद्धि उन चीजों को साथ साथ धारण कर लेगी और 10-20 दिन के बाद ही हमारा जीवन बदल जाएगा, ये धारणाएं हमारे जीवन में समा जाएंगी। तो मुरली सुनने का रस भी इस तरह से हम प्राप्त करें सवेरे से लेकर 8 बजे तक। ये समय हम बाबा को समर्पित कर दें। ये समय तो स्पेशली बाबा ने हमें दिया है ना, लौकिक मनुष्य के पास ये समय कहाँ होता है। आप सवेरे पांच से छह के बीच, साढ़े छह तक, जो भी आपके दिनचर्या के अनुसार समय निकले, स्नान आदि करके थोड़ा खुली हवा में घूमें, स्वमन का अभ्यास करते हुए घूमें। स्वमन से मनुष्य के विचार बहुत महान हो जाते हैं। स्नान करते हुए भी विशेष रूप से ये प्रैक्टिस चलती रहे, मैं आत्मा इष्ट देव इष्ट देवी हूँ इस शरीर में, ये देह मेरा मंदिर है, मैं अपने मंदिर को स्नान करा रही हूँ, मैं अपने मंदिर को स्वच्छ कर रही हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग है। ऐसी बातें करते हुए अपने से आप नहाएंगे तो स्नान डबल फ्रेश करेगा, मन भी फ्रेश हो जाएगा, तन भी फ्रेश हो जाएगा। अभ्यास करें, बाबा नहला रहा है मुझे, बाबा पानी डाल रहा है मेरे ऊपर, ऊपर से बाबा के वाइब्रेशंस पड़ रहे हैं, नीचे से पानी पड़ रहा है, बहुत सुख मिलेगा, आनंदित हो उठेंगे आप। इस तरह सवेरे ही योग युक्त जीवन का फाउंडेशन डाल दें स्वयं के अंदर। जब कर्म क्षेत्र पर जाएं तो कर्म क्षेत्र पर ये लक्ष्य रख लें कि मुझे अच्छे से अच्छा योग करना है। केवल कर्म कॉन्शियस नहीं हो जाना है, कर्म में लिप्त नहीं हो जाना है, कर्म करते हुए सब कुछ भुला नहीं देना है। ऐसा ना हो कि कर्म में मन बुद्धि इतनी व्यस्त हो जाए कि बाकी कुछ भी याद न रहे। कम से कम दो बातों की स्मृति जब आप कर्म शुरू कर रहे हैं तब से ही प्रारंभ कर दो और लक्ष्य रखो, दोपहर तक पांच बार, शाम के टाइम पांच बार, ये याद जरूर करना है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा करा रही हूँ, करण करावनहार स्वयं बाबा है। और दूसरा संकल्प, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। चाहे आप उसे अपना फ्रेंड बना लें, उसका आह्वान कर लिया करें, उसको नीचे बुला लिया करें, वो नीचे आ जाएगा। ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि एक शिव बाबा अनेकों के पास कैसे आएगा, वो सर्वशक्तिवान है और संपूर्ण है। वो अपने संकल्प से ही एक क्षण में अपने अनंत स्वरूप भी निर्माण कर लेता है, उस सब को अपनी उपस्थिति का आभास दे सकता है। कर्म क्षेत्र पर ये अभ्यास दो कम से कम हर एक को पांच पांच बार करने चाहिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। कर्म आपको थकाएगा भी नहीं, कर्म के संकल्प आपके अंतर्मन में छपेंगे भी नहीं, आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने कुछ नहीं किया। ये एक बहुत सुंदर योग युक्त जीवन की पहचान है कि कर्म करते हुए योगी को ये महसूस होता है कि जैसे वो कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ जैसे स्वतः ही हो रहा है, ड्रामा चल रहा है बस। ये बहुत अच्छी फीलिंग है, इसको भी अनुभवों से ही जाना जा सकता है। कर्म क्षेत्र पर दो अभ्यास और कर सकते हैं। मैं जनरल रूप से सबके लिए ये बात कह रहा हूँ, जो भी इन बातों को पकड़ सके, जो अच्छी साधनाएं और तपस्या कर सके, उन्हें करना चाहिए। तपस्या का अर्थ ही होता है दृढ़ता पूर्वक बार 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 अभ्यास करना। जो लोग भूल जाते हैं, अभ्यास करना ही भूल जाते हैं, उनको तपस्वी नहीं कहा जाएगा। अभ्यास करें, हाथों से कर्म कर रहे हैं, बुद्धि से मानो शिव बाबा को देख रहे हैं, बुद्धि से उसको पकड़ लें, बुद्धि उस पर लगी हुई है, हाथों से यहाँ काम हो रहा है, बहुत सुख मिलेगा। थोड़ी थोड़ी देर भी करें, कभी अभ्यास करें नीचे काम कर रहे हैं, ऊपर से शिव बाबा के वाइब्रेशंस पड़ रहे हैं, उसकी किरणें पड़ रही हैं मुझ पर। ये अभ्यास बीच बीच में कर लें, 10-10 सेकंड भी कर लें, फिर 30 सेकंड तक इसको ले चलें, तो इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। माताओं के लिए मैं विशेष कहूंगा, सबको कर्म योगी बनना है, भोजन बनाते हुए विशेष रूप से अच्छा योग का अभ्यास करेंगे, ये याद रखते हुए बाबा के ये महावाक्य हैं कि यदि तुम योगयुक्त भोजन खाओ तो तुम्हारे हृदय शुद्ध हो जाएंगे। 50% आत्मा शुद्ध हो सकती है योगयुक्त भोजन से। आप अपने सारे परिवार को ज्ञान की ओर खींच सकते हैं योगयुक्त भोजन से। आप दूसरों को पवित्र बना सकते हैं योगयुक्त भोजन से। अपने घर के वातावरण में शांति ला सकते हैं यदि योग युक्त होकर भोजन बनाया जाए। माताएं इस चीज पर ध्यान दें, जो भाई भी हाथ से भोजन बनाते हैं वो भी इस चीज पर ध्यान दें। योग के समय को तपस्या का समय मान लें। मुझे भोजन बनाना है ये नहीं, एक घंटा तपस्या का समय है। अच्छे अच्छे अभ्यास करें, कुछ अभ्यास निश्चित कर लें। फिर सब्जी काटेंगे ये अभ्यास करेंगे, आटा बनाएंगे ये अभ्यास करेंगे, सब्जी छौंकेंगे बनाएंगे ये अभ्यास करेंगे, रोटी बनाएंगे ये अभ्यास करेंगे, चावल बनाएंगे ये अभ्यास करेंगे, दाल बनाएंगे ये अभ्यास करेंगे। उसमें स्वमान भी हो, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास हो, किसी में बाबा से बातें की जा रही हो, किसी काम में बाबा का नीचे आह्वान कर लो, देखो बाबा हमारे पास आ गया, किचन में आ गया है, दृष्टि डाल रहा है। ऐसे कर्म करते हुए यदि निरंतर हम ध्यान देंगे तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी तरह योगयुक्त हो जाएगी। मैं सभी को कहूंगा, बहुत अच्छे अनुभव की चीज है बाप दादा का आह्वान किया करें अपने घर में। आप लक्ष्य बना लें, 5 बार बाबा का आह्वान करना है। जहां भी आप कार्यरत हैं वहां चलते हुए किसी भी समय, समस्याओं के समय, आपको कहीं भाषण करना है तब बाप दादा को बुलाओ, 1 मिनट रूढ़िहान करो, हे प्राणेश्वर हम आपको बहुत प्यार से याद कर रहे हैं, हमने आपके लिए बहुत अच्छा भोजन बनाया है, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। हे प्राणों से भी प्यारे शिव बाबा, हम आपको जन्म जन्म याद करना करते आए हैं, अब आप परम धाम में हो, हम नीचे, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। देखो शिव बाबा ऊपर से चलता है, महाज्योति नीचे उतर रही है, उसकी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं, वो नीचे आ रहे हैं, ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर लेते हैं, दोनों नीचे उतर रहे हैं। ये डिवाइन फरिश्ता अपनी तेजस्वी किरणें फैलाते हुए आकाश मंडल से नीचे आ रहा है। धीरे धीरे देखते रहो, आनंद लेते रहो। जल्दी में नहीं, 10 सेकंड में नीचे आ गए बाबा, मेरे सामने हैं, घर में हैं, उनकी किरणें फैल रही हैं चारों ओर। बस इस सीन को देखते रहो, इससे स्थिति बहुत अच्छी योगयुक्त हो जाएगी। ओम शांति।